अब चलते हैं सूरत मुल्क पे। खुद को कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज दुआओं का सिलसिला क्या शुरू किया कि अल्लाह ने हमारे सामने कुरान की सूरतें शुरू कर दी। तो आइए जरा सूरत मुल्क की तिलावत सुनते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
چلیے آئیے اب اس کا ذرا سا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جب رات کو یہ سورت پڑھیں گے تو اس آیت پہ غور کیجئے گا تو آپ کو ناممکنات ممکن لگیں گی کہ جس رب کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے تو پھر اس سے تعلق لگا کر اس سے تعلق مضبوط کر کر انسان خود بھی कितना हौसले वाला और कितनी बड़ी कुदरत उसकी हो जाती है कि फिर उसको अल्लाह के नाम पर कोई चीज भी मुश्किल नहीं लगती। क्यों बनाई उसने ये दुनिया? जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है। वो गालिब है और बड़ा बख्शने वाला, जिसने 7 आसमान बनाए और एक दूसरे के ऊपर उनको रखा। तुम खुदाए रहमान के निजामे तखलीक में कोई बेजाबतगी और अदम तनासुब नहीं देखोगे। फिर तुम निगाह फेर कर देखो, मुराद गौर व फिक्र करो, क्या तुम इस तखलीक में कोई शिगाफ या खलल देखते हो? यानी कोई टेढ़ापन है, कहीं से आसमान फटा हुआ? पुरानी छतें देखी होंगी आप, देखते हैं कि उन छतों में कितने होल्स बन जाते हैं, कितना कुछ होता है। अल्लाह ताला आपको मुझे दावत देते हैं कि कभी आपने इसके बारे में देखा कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने कोई झोल नहीं रखे? तो दोबारा जरा सोचिए, पुरानी छतें तो 100 साल के बाद भी उधड़ने लगे। लेकिन फरमाया, ऐ देखने वाले, क्या तू खुदाए रहमान की तखलीक में कोई नुक्स देखते हो? जरा आंख उठाकर देखो, भला तुमको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है? आपको आया कभी? फिर दोबारा, बल्कि सह बार नजर कर कर देख लीजिए, आपकी निगाह नाकाम और थक कर लौटेगी। यानी बार बार देख लो, पहली नजर में गलतियां नहीं दिखी तो दूसरी बार नजर डाल कर देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि खुदाए रहमान की चीज में कोई भी शक नहीं, कुछ भी नहीं। और बेशक हमने सबसे करीबी आसमाने कायनात को सितारों, सयारों और दीगर हलाई कुर्रों और जर्रों की शक्ल में चिरागों से मुजयन फरमा दिया, यानी अंधेरी रात में खूबसूरत चमकते चिराग लगा दिए। और हमने इन्हीं में से बास को शैतानों, कुमार भगाने का जरिया भी बना दिया, और हमने इन शैतानों के लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, दोजख का अजाब है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो इसकी खौफनाक आवाज सुनेंगे और वो आग जोश मार रही होगी, गोया भी शिद्दते गजब से फटकर पारा पारा हो जाएगी। जब इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा तो इसके दारोगे यानी इसके गार्डमैन इनसे पूछेंगे, जरा सा इस वक्त पूरी तवज्जो रखकर सुनिएगा, जब लोग डाले जाएंगे तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डराने वाला आया था तो हमने झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम तो महज बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, अगर हम हक बात को सुनते या समझते होते तो आज हम अहले जहन्नुम में शामिल ना होते। उस वक्त क्या फायदा दुनिया में पढ़ना लिखना समझना समझाना एक एक्स्ट्रा काम लगता है, कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात, कोई नहीं करता तो इट्स ओके। लेकिन वहां कहेंगे, काश हम सीख जाते समझ जाते। बस वो अपने गुनाह का इतराफ करेंगे, सो दोजख वालों के लिए रहमत इलाही से दूरी मुकद्दर है। बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, इनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। बड़े रब से डरने वाले बड़ा अजर पाएंगे और वो बड़े नहीं छोटे गुनाहों से भी बचते हैं। और तुम लोग अपनी बात छुपाकर कहो, ये इसे बुलंद आवाज में कहो, यकीनन वो सीनों की छुपी हुई बातों को भी खूब जानता है। भला वो नहीं जानता जिसने पैदा किया है? हालांकि वो बड़ा बारीक बीन हर चीज से खबरदार है। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को नरम और मुसख्खर कर दिया, सो तुम इसके रास्तों में चलो फिरो और इसके दिए हुए रिस्क में से खाओ, और इसी की तरफ मरने के बाद उठकर जाना है। क्या तुम आसमान वाले रब से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें जमीन में धसा दे? इसी तरह के वो अचानक लरसने लगे, जरा सा इनको भी सुनते वक्त सोचिए, क्या हमें भी कोई गलत काम करते वक्त अल्लाह की पकड़ का इतना डर लगता है? क्या तुम आसमान वाले रब से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे? पसंद करीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा है। और बेशक इन लोगों ने भी छुटलाया था जो इनसे पहले थे, बस मेरा इनकार कैसा इबरतनाक साबित हुआ। क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर पर फैलाए हुए और कभी समेटे हुए नहीं देखा? इन्हें फिजा में गिरने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय रहमान के, बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है। शायद ही कोई फ्लाइट ऐसी हो कि जिसमें मैंने शायद को ना याद किया हो, जब विंग्स बाहर खुलते उड़ते और मुझसे मरते दिखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि जैसे परिंदों को रब संभालता है, इस बड़े जहाज को भी अल्लाह ही सहारा देता है। इबरत की निगाह हो जाती है कुरान पढ़ने के बाद, हर चीज में से आपको सबक दिखते हैं। फिर आगे फरमाया, भला कोई ऐसा है जो तुम्हारी फौज बनकर खुदाए रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे? काफिर महज धोखे में मुबतला हैं। भला कोई ऐसा है जो तुम्हें रिस्क दे सके अगर अल्लाह तुमसे अपना रिस्क रोक ले? बल्कि वो सरकशी और हक से नफरत में मजबूती से अड़े हुए हैं। क्या वो शख्स जो मुंह के बल ऊंधा चल रहा है ज्यादा राह रास पर है, या वो जो के सीधी हालत में सही राह पर गामजन है? ये नीचे देखना और ऊपर क्या है, ये जो नीचे है ना मुंह के बल ऊंधा, ये मादा परस्ती की तरफ इशारा है। जाहिर मुंह नीचे होगा तो सामने आई चीज नहीं दिखेगी ना, इसी तरह बाज़वा सामने से आती भी आखरत हमें नहीं दिखती, और आखिरी वक्त तक भी हम इस आयत के मुताबिक अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। आप फरमा दीजिए, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, यानी अल्लाह वो है जिसने पैदा फरमाया, तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। आप सूरह सजदा के मजमून और इस आयत को देख लीजिए, सोते वक्त यही कहा जा रहा है कि आज सारा दिन कानों आंखों और दिल से क्या काम लिए। फरमा दीजिए, वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और तुम रोजे क्यामत उसी की तरफ जमा किए जाओगे। और वो कहते हैं ये क्यामत का वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? फरमा दीजिए कि इसके वक्त का इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और मैं तो सिर्फ वाजह डर सुनाने वाला हूँ। अगर वक्त बता दिया जाए तो डर खत्म हो जाएगा, मुराद ये कि पहले से नहीं बताया। और याद रखो, क्या फिर जब इस दिन को करीब देख लेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ कर स्याह हो जाएंगे, और इनसे कहा जाएगा यही वो वादा है जिसके जल्द जाहिर किए जाने के तुम बहुत तलबगार थे। फरमा दीजिए, भला ये बताओ, अगर अल्लाह मुझे मौत से हमकिनार कर दे जैसे तुम ख्वाहिश करते हो, और जो मेरे साथ है इनको भी, या हम पर रहम फरमाए यानी हमारी मौत को थोड़ा सा मौखिर कर दे, पोस्टपोन कर दे, तो इन दोनों सूरतों में कौन है जो काफिरों को दर्दनाक अजाब से पना देगा? फरमा दीजिए, वही खुदाए रहमान है जिस पर हम ईमान ले आए हैं और इसी पर हमने भरोसा किया है। बस तुम अन करीब जान लोगे कि कौन शख्स खुली गुमराही में है। फरमा दीजिए, अगर तुम्हारा पानी जमीन में बहुत नीचे उतर जाए यानी खुश्क हो जाए, तो कौन है जो तुम्हें जमीन पर बहता हुआ पानी ला दे? एक क्वेश्चन मार्क के साथ सूरत मुल्क पूरी होती है, और इसको पढ़ते वक्त इंसान वाकई अपने आप को बेबस महसूस करता है। तो क्या पता चला, रात को सोते वक्त ये दो सूरतें पढ़ना हम सब को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक याद दिलाता है। शायद सुनने में आप लोगों को शुरू में मुश्किल लगे, ये तो बहुत वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, सुननी शुरू कर दीजिए, पढ़नी नहीं तो सुननी शुरू कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता सुनते सुनते पढ़ने की आदत होगी, और पढ़ते पढ़ते फिर खुद से पढ़ने लगेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सूरतों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था पहला अमल सोते वक्त जो अल्लाह के नबी सल्लम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लीजिए, बच्चों के साथ एक एक्टिविटी बनाते हुए फैमिली टाइम में इस एक एक आयत को एक दूसरे से सुनकर याद कीजिए। याद नहीं भी कर सकते तो देख के पढ़िए, सुन लीजिए, इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएगा। आगे चलते हैं सोते वक्त की दुआ नंबर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? दोनों हथेलियां साथ मिलाकर, ये जैसे ऐसे हम ऐसे करते हैं तेल लगाने से पहले या कोई क्रीम लगाते हैं, तो आप अपनी मेरी आवाज से भी महसूस कीजिए, यानी ऐसे दोनों हथेलियों को मिलाइए। फिर सूरत अखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़िए, फिर इसमें फूंक मारिए और दोनों को अपने जिस्म पर जहां तक मुमकिन हो फेरिए। सर, चेहरे और जिस्म के सामने वाले हिस्से से शुरू कीजिए, और इसी तरह 3 दफा करेंगे। इसकी रिवायत है सही बुखारी 5017। सुनेंगे इसकी भी तिलावत, लेकिन उस दौरान जरा सा इसको जज्ब कीजिए। कैसे पढ़ना है? तीनों सूरतें तो आखिरी सबको आती हैं। अभी आपको इसलिए सुना देंगे कि आप इसी से सुनना शुरू कर दें तो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है? और तीनों सूरतों को मौवज़ात भी कहते हैं, यानी पनाह देने वाली चीज़ें। जैसे तावीज़ का लफ्ज़ होता है ना, यानी रात भर हम तो सो जाते हैं ना, हमें नहीं पता हमारे पास कोई कॉकरोच है, कोई मच्छर है, कोई और मुझी चीज़ है। लेकिन इंशाल्लाह ये तीन सूरतें किस तरह, पहले पढ़ा, फिर आप अगर ऐसे अपनी दोनों थैलियों को जोड़कर फूकिए, और उसके बाद जिस्म पर जहां तक मुमकिन हो, सर, चेहरे और जिस्म के सामने हिस्से से शुरू करें। बिल्कुल, आप सोचिए, ऐसे मैं करके दिखा रही हूँ इस वक्त आपको। अपने जिस्म पे आगे हाथ रखिए, टांगों पे, जिस हद तक मुमकिन हो, और 3 दफा ये करना है, ठीक है? यानी ये सूरतें भी पढ़नी है और 3 दफा ये काम करना है। और इसमें जरा सा भी आप गौर करेंगे तो बहुत ही आसान है। आइए, इनको सुनते भी हैं और दुआ भी करेंगे कि जब हम पढ़ें तो हमें इनका भी मफहूम समझ आ सके। जी, शुरू कीजिए।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الحمد لله. आइए जरा इनका भी तर्जुमा इस सोच के साथ सुनते हैं कि हम इस पे गौर भी करेंगे जब रात को पढ़ेंगे। पहले तो देखिए सूरत अखलास, अल्लाह हमें मुखलस बना दे। जब हम अल्लाह के लिए खालिस हो जाएंगे ना, तो हमारा सोना, जीना, मरना, खाना पीना सब अल्लाह के लिए होगा। कि कुल इन सलाती व नुसुखी व महया व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस सोच के साथ तर्जमे पे गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कह दीजिए कि वो ज़ाते पाक जिसका नाम अल्लाह है, एक है, माबूदे बरहक जो बेनियाज है, न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई इसका हमसर नहीं। मुख्तसर सी आयात में पूरी तौहीद सिखा दी, इसीलिए सूरत अखलास को 1/3 ऑफ कुरान कहते हैं। अल्लाह हमें अल्लाह के एक होने का यकीन दिला दे। कुरान यही कहता है कि अल्लाह एक है। कुरान ये नहीं कहता अल्लाह है, वो तो हम सबको पता है, हमारी फितरत को भी पता है, एथियस्ट की भी रूह को पता है कि अल्लाह है, लेकिन यहाँ बात अल्लाह एक है। जब हम अल्लाह को एक समझेंगे तो फिर खालिक, मालिक, मुदब्बिर और उसके सारे अस्माओ सिफात में उसको एक समझेंगे। आगे है सूरत फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहो कि मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, हर चीज की बदी से जो इसने पैदा की, और शबे तारीकी की बुराई से जबकि इसका अंधेरा छा जाए। यानी तारीकी शब की बुराई से जब इसका अंधेरा छा जाए, और गिरहों पर पढ़ पढ़ कर फूकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाले की बुराई से जब हसद करने लगे। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला की पनाह में आकर 3 चीजों से खुद को बचाना चाहा, हर चीज का शर, رات کا شر اور جادو ٹونے کا شر اور حسد کرنے والے کا حسد. اور اگلی صورت میں اللہ کی تین صفات کو سامنے رکھ کر بس ایک چیز سے پناہ مانگی. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں, یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی, لوگوں کے معبود برحق کی. شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو گویا کہ رات کو ان دعاؤں کا اور ان صورتوں کا پڑھنا, اس کا اہتمام کرنا اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ تجھ سے مدد مانگے بغیر, ہم تیری پناہ میں آئے بغیر کسی شر سے نہیں بچ سکتے. دنیا میں اس جاگتے وقت میں تو ہم ہیں ہی, لیکن ہم تو جو سو جاتے ہیں اور تو جاگتا ہے ہماری حفاظت کے لیے, کیونکہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. تو یہ دعائیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں. يَجْمَعُ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَنْفُثُ فِيهِمَا فَيَقْرَأُ. اور یہ صورتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی, اور آپ اگر اردو انگلش ترجمے پہ غور و فکر کرتے ہوئے ان کو پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ خود کو بہت سیکیور اور محفوظ محسوس کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم میں سے کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شر سے بچ سکیں. اور اس سے ایک اور چیز بھی ہوگی کہ کچھ حصہ قرآن پاک کا بھی پڑھا جائے گا. اور یہ جو بات ہے نا, یفعل ذلک ثلاث مرات, تین دفعہ کیوں ہے؟ آپ کی توجہ بڑھانے کے لیے. ایک دفعہ ہو سکتا ہے انسان زیادہ کیئر نہ کرے, دوسری دفعہ انشاءاللہ کریں گے تو اس میں اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. تو یہاں ہمارے دو اذکار پورے ہوئے. آپ آج رات کو اگر ان دو اذکار کو بھی پورے خشوع اور خضوع سے کر گئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سونے میں مزہ آنے لگے گا. اور اپنے بچوں کو سنائیے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ سیریز اکیلے نہیں سنیے, اپنے بچوں کے ساتھ سنیے. کل تک آج والا لیسن سن لیجئے تاکہ کل سے بچے ساتھ بیٹھیں. لائف سننا آسان ہوتا ہے, وقت جلدی گزر جاتا ہے, بات میں ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹائم سیٹ کیجئے, یہ بھی ہوم ورک ہے. بچے مصروف ہیں تو کیا ہوا, کون سے وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. تھوڑا سا کمی بیشی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دے گا اس کتاب کے نور سے.